ज्यादा लोगों के बीच में डींग न मारे कि देखो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जो करना है उसको छिपा के रखो और करने के बाद लोगों को पता चले कि अरे इसने तो ये कर दिया। ऐसा करने से आपकी बात दूसरों तक प्रकट नहीं होगी और आपकी उन्नति में बाधा नहीं होगी। पर्वत की चोटी पर चढ़कर अथवा राजमहल के एकांत स्थान में जाकर या जंगल में निर्जन स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए। लोग कहते हैं ना, भीतारे भी कान हुए, ऊपर जार बात करो मकान के ऊपर, या जंगल में जार बात करो कोई गुप्त बात करनी हो तो। हे भारत, जो मित्र ना हो, मित्र होने पर भी पंडित ना हो, पंडित होने पर भी जिसका मन वश में ना हो, वह अपना गुप्त मंत्र जानने की योग्य नहीं होता। अपनी केवल खुशामदी कर देने मात्र से हम उसे मित्र मान लेते हैं, भूल है। राजा अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी को अपना मंत्री न बनाए, क्योंकि धन की प्राप्ति और मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर होता है। जिसके धर्म अर्थ और काम विषयक सभी कार्यों को पूर्ण होने के बाद सदा सभागण जान लेते हैं, वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। अपने मंत्र को गुप्त रखने वाला उस राजा को निस्संदेह सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो मोहवश बुरे कर्म करता है वह उन कार्यों के विपरीत परिणाम होने से अपने कुल से भी हाथ धो बैठता है। उत्तम कर्मों का अनुष्ठान तो बहुत सुख देने वाला होता है, किंतु उनका किया हुआ काम पश्चाताप का कारण बनता है। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता। श्राद्ध में भाई वेद पढ़ोड़ा ब्राह्मण नहीं जिमाणो। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार संधि विग्रह यान आसन द्वेदी भाव और समाश्रय नामक छह गुणों को जाने बिना कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता। जो संधि विग्रह आदि छह गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है, स्थिति वृद्धि और ह्रास को जानता है, जिसके स्वभाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा के ये पृथ्वी अधीन रहती है। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्यों की स्वयं देखभाल करता है, जो खजाने की भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाली होती है। भूपति को चाहिए कि वह राजा नाम से और राजोचित छत्र धारण से संतुष्ट रहे, सेवकों को पर्याप्त धन दे, सब अकेला ही न हड़प ले, एकदम मेरे को ही मिल जाए। ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है, मंत्री को राजा जानता है, राजा को भी राजा जानता है। वश में आए हुए वध योग्य शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि अपना बल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए और बल होने पर उसे मार डालना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु मारा न गया तो शीघ्र ही वह आपके लिए भय पैदा कर देगा। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। अब रोगी पर काहे क्रोध करो, वो तो रोगी है। बच्चे पर क्या करो, वो छोटा बच्चा है। बूढ़े पर, राजा पर, ब्राह्मण पर, देवता पर क्रोध को प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए, क्रोध के पात्र नहीं है। निरर्थक कलह करना मूर्खों का काम है, बुद्धिमान पुरुष को इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे लोक में यश मिलता है और अनर्थों का सामना नहीं करना पड़ता। जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं चाहती जैसे स्त्री नपुंसक पति को नहीं चाहती। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई देखे कि बुद्धि से धन मिलता है और मूर्खता से दरिद्र, ऐसा कोई नियम नहीं है। धन का मिलना प्रारब्ध से संबंध है। संसार चक्र के वृत्तांत को केवल विद्वान पुरुष जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। मूर्ख मनुष्य विद्याशील अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर करते हैं। मूर्ख मनुष्य जिनका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख है, गुणों में दोष देखने वाले हैं, अधार्मिक है, बुरे वचन बोलने वाले हैं और क्रोधी है, उनके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ टूट पड़ते हैं। ठगाई नहीं करना, दान देना, वाणी पर संयम रखना, अच्छी तरह कही हुई हित की बात, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेते हैं। किसी को भी धोखा नहीं देना, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और सरल राजा खजाना खत्म होने पर भी सहायकों को भी पा जाता है, अर्थात उसके सहायक मिलते रहते हैं। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये सात बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली होती हैं। जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट, कृतघ्न और निर्लज्ज है, ऐसे राजा इस लोक में त्याग करने योग्य होते हैं। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्तियों को कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य के भांति रात दिन दुखी और संदेह में घिरा रहता है। कहते हैं सांप है, अब नींद गोनी आवे। जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योग और क्षेत्र में बाधा आती है, उन लोगों को देवताओं के भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिए। जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, वे संशय में पड़े रहते हैं। जहां का शासन स्त्री, जुआरी और बालक के हाथ में है, वहां के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वालों की भांति विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते, मैं उन्हें पंडित मानता हूं, क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण होता है। जुआरी जिसकी तारीफ करते हों, वेश्याएं जिसकी बड़ाई करती हों, वह मनुष्य जीते हुए मुर्दे के समान है। हे भारत, आपने उन महान धनुर्धर अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर, जो ये महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रखा है, इसलिए आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते हुए देखोगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यही तो दुख मुझे सताया जा रहा है। यह पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा ने धागे से बांधी हुई कठपुतली के समान इसके प्रारब्ध को अधीन कर रखा, इसके प्रारब्ध के अधीन कर रखा है। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं भाग्य से बंधा हुआ हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरे भाग्य के अधीन होकर कर रहा हूं। इसलिए तुम कहते चलो, कहते चलो, मैं सुनने के लिए धैर्य धारण किए बैठा हूं। विदुर जी बोले, धृतराष्ट्र, भाग्य से क्या मिलता है और पुरुषार्थ से क्या मिलता है, इस विषय में आपको ज्ञान नहीं है। समय के विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोले तो उनका भी अपमान होगा और उनकी बुद्धि की भी अवज्ञा होगी। संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय होता है और तीसरा मंत्र तथा औषधियों के बल से प्रिय होता है, किंतु जो वास्तव में प्रिय है वह तो सदा ही प्रिय है। जिससे द्वेष हो जाता है वह न साधु है न विद्वान है और न बुद्धिमान है। प्रियतम के तो सभी कर्म शुभ होते हैं और दुश्मन के सभी काम पापमय दिखते हैं। राजन, आपको याद है दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था केवल इसी एक पुत्र को तुम त्याग दो, इसके त्याग से 100 पुत्रों की वृद्धि होगी और इसका त्याग न करने से 100 पुत्रों का नाश होगा। याद है, जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, और जो क्षय बहुत आदर करने वाला हो, अभ्युदय का कारण बनता हो, उस क्षय को करने में कोई नुकसान नहीं है। महाराज, वास्तव में जो क्षय वृद्धि का कारण होता है वो क्षय नहीं होता है, किंतु उस लाभ को भी क्षय मानना चाहिए जिसे पाने से बहुतों का नाश हो जाए। हे धृतराष्ट्र, कुछ लोग गुण के धनी होते हैं और कुछ लोग धन के ही धनी होते हैं। जो धन के धनी होते हैं उनके पास गुणों की कमी रहती है, उन्हें धन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम जो कुछ कह रहे हो बड़ा अच्छा लगता है, परिणाम में हितकर है, बुद्धिमान लोग इसका ठीक अनुमोदन करते हैं। ये भी ठीक है कि जिस ओर धर्म होता है उस पक्ष की जीत होती है, तो भी मैं अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। भैंस बैठ की पानी में, अभी मैं बेटे का त्याग नहीं कर सकता। विदुर जी बोले, जो अधिक गुणों से संपन्न और विनयी है वह प्राणियों का तनिक भी संगार होते देख उसकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। जो दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देने और आपस में फूट डालने के लिए सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन दोष से भरा हुआ है और जिनके साथ रहने में बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लोगों से धन लेने में महान दोष है और उन्हें देने में बहुत बड़ा भय है। रुपया पैसा ऐसा आदमी अनुमत दीजिए। दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव है, जो कामी है, जो निर्लज्ज है, शठ है और प्रसिद्ध पापी है, वे साथ रखने के योग्य नहीं है, निंदित माने गए हैं। उपयुक्त दोष के अतिरिक्त और जो जो भी महान दोष है उनसे युक्त मनुष्यों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसों का संग करने पर उन दोषों का अपने पर भी प्रभाव पड़ जाता है। सौहार्द भाव निवृत्त हो जाने पर नीच पुरुष का प्रेम नष्ट हो जाता है, उस सौहार्द से होने वाले फल की सिद्धि और सुख का भी नाश हो जाता है। फिर वह नीच पुरुष निंदा करने का यत्न करता है, थोड़ा भी अपराध हो जाने पर मोह बस उसके विनाश के लिए उद्योग करता है, उसे तनिक शांति नहीं मिलती। उस प्रकार के नीच क्रूर और अजितेंद्रिय पुरुषों से होने वाले संग पर अपनी बुद्धि से पूर्ण विचार करके विद्वान पुरुष उसे दूर से ही त्याग देते हैं। जो अपने कुटुंबी, दरिद्र, दीन और रोगी पर अनुग्रह करता है वह पुत्र और पशुओं से समृद्ध होता है, और अनंत कल्याण का अनुभव होता है। अपना कुटुंबी यदि कोई गरीब हो तो थोड़ी सहायता करे उसकी, रोगी हो तो सेवा करे, दीन है तो सहायता करे। ऐसा करने वाला पुत्र पौत्रवान और सब प्रकार के धन धान्य से संपन्न और कल्याण का पात्र होता है। जो लोग अपने भले की इच्छा करते हैं उन्हें अपने जाति भाइयों को उन्नतिशील बनाना चाहिए, इससे आपकी बड़ी उन्नति होगी और आपके कुल की वृद्धि होगी। जो अपने कुटुंबी जनों का सत्कार करता है वह कल्याण का भागी होता है। अपने कुटुंब के लोग गुणहीन हो तो भी उनकी रक्षा करो, फिर भी जो कृपाविलासी और गुणवान है उनकी तो बात ही क्या है। आप समर्थ हैं वीर पांडवों पर कृपा कीजिए, और तो और धृतराष्ट्र उनकी जीविका के लिए कुछ गा भी दे दीजिए। नरेश्वर ऐसा करने से आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। आप बूढ़े हो चले हैं, शरीर का अब क्या भरोसा है, आपको अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, मुझे भी आपके हित की बात कहनी चाहिए, आप मुझे अपना हितेशी समझे। तात, सुख चाहने वाले को अपने जाति भाइयों के साथ कलह नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ मिलकर सुख का उपभोग करना चाहिए। जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, बातचीत और प्रेम का बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ने से मन में शांति मिलती है। इस जगत में जाति भाई तारते हैं और इस जगत में जाति भाई ही डुबोते हैं। इनमें जो सदाचारी हैं वे तो तारते हैं और दुराचारी है वो डुबोते हैं। विषैले बाण हाथ में लिए वे शिकारी के पास पहुंचकर जैसे मृग को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बंधु अपने धनी बंधु के पास पहुंचकर दुख पाता है, उसके पाप का भागी वह धनी होता है। भाई बंधु है वो पैसा गणा है, अपने दूसरे भाई कने भी सुनजार यदि धन मांगे तो मांगे देना, बस बिना मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ी, पहले से ही सहायता कर दे। तो जिस कर्म के करने से अंत में खाट पर बैठकर पछताना पड़े उसको पहले से ही नहीं करना चाहिए। आप पांडवों को अथवा अपने पुत्रों को मारे गए सुनकर पीछे संताप करेंगे, अतः इस बात का पहले ही विचार कर लीजिए। शुक्राचार्य के सिवा दूसरा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता है, अतः जो बीत गया सो बीत गया, अब उसकी बात तो छोड़ो, अब आगे के कर्तव्य पर आप बुद्धिमानी से सलाह करके बढ़ो। ये अब आपके ऊपर निर्भर है और आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों पर ही भविष्य निर्भर है। नरेश्वर, दुर्योधन ने पहले यदि पांडवों के प्रति यह अपराध किया है तो आप इस कुल में बड़े बूढ़े हैं, आपके द्वारा अपने पुत्रों के द्वारा किए गए पाप का परिमार्जन कर लेना चाहिए। यदि आप उनको राजपद पर स्थापित करना चाहते हैं या कर देंगे तो संसार में आपका कलंक धुल जाएगा पांडवों को, और आप बुद्धिमान पुरुषों के माननीय हो जाएंगे। जो धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणित करता है वो चिरकाल तक यश का भागी होता है। कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है। सुनो, कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ और ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान नहीं किया। ये कारण है धृतराष्ट्र के कि इतो धृतराष्ट्र ने सुनाया और कोई हुई तो कहीं हो नहीं, इतो कह रहा है तो उड़ा दिया है। तो धृतराष्ट्र ने इतो ज्ञान सुनाया हुई तो कहीं हो नहीं। बेचारा विदुर जी कहवे कि कुशल विद्वान के द्वारा भी उपदेश दिया हुआ ज्ञान तब तक व्यर्थ ही है यदि उस ज्ञान को धारण नहीं किया और उसका अनुष्ठान नहीं किया तो व्यर्थ है। जैसे कोई गंगा जल की धारा बहती हो और पात्र उल्टा हो और कह दे कि इतनी देर से पात्र तो भरा ही नहीं, तो पात्र उल्टा है तो गंगा जल क्या करेगा। इसी प्रकार जो सुनना ही नहीं चाहेगा उसको ज्ञान क्या करेगा। जो विद्वान पाप रूप फल देने वाले कर्मों का आरंभ भी नहीं करता वो पाप जो विद्वान पाप रूप फल देने वाले कर्म का आरंभ भी नहीं करता है वो विद्वान आगे बढ़ता ही रहता है, किंतु जो पूर्व में किए हुए पापों का विचार न करके उन्हीं का अनुसरण करता है वो बुद्धिमान मनुष्य अगाध कीचड़ में भरे हुए नरक में गिराया जाता है। बुद्धिमान पुरुष मंत्र भेद के इन छह द्वारों को जाने और धन को रक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखे। नशे का सेवन, निद्रा, आवश्यक बातों की जानकारी न रखना, अपने नेत्र मुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों में विश्वास और मूर्ख दूत पर भरोसा रखना, ये छह ऐसे हैं कि जिनसे नाश होता है। यदि धन की रक्षा करनी हो तो इन छह चीजों के दरवाजे बंद कर दो, नशा, निद्रा, मूर्खता इत्यादि। नेत्र का विकार माने किसी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं रखना। मुख का विकार क्या है? किसी की निंदा नहीं करना। जो इन दरवाजों को बंद सदा के लिए बंद कर देता है वह अर्थ, धर्म और काम के सेवन में लगा रहकर शत्रुओं को वश में कर लेता है। बृहस्पति के समान मनुष्य भी शास्त्र ज्ञान अथवा वृद्धों की सेवा के बिना धर्म और अर्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान सद्व्यवहार में ठहरता है। धृतराष्ट्र को इतना ज्ञान दिया, ठहरा क्यों नहीं? उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। अच्छा व्यवहार करेगा उसमें ज्ञान ठहरेगा। जैसे ऊसर भूमि में कितना ही डाल दो, बीज डाल दो, बरसात हो जाओ, खाद हो जाओ, वो बीज उगता नहीं है। इसी प्रकार से अच्छे व्यवहार के बिना ये ज्ञान ठहरता नहीं है। समुद्र में गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है। जो सुनता ही नहीं, अच्छा व्यवहार करता ही नहीं, उसको कही हुई बात वही नष्ट हो जाती है। अजितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान और राख में किया हुआ हवन नष्ट ही होता है। बुद्धिमान पुरुष बुद्धि से जांच कर अपने अनुभव से बारंबार उनकी योग्यता का निश्चय करे और फिर दूसरों से सुनकर और स्वयं देखकर भलीभांति विचार करके विद्वानों के साथ मित्रता करे। विनय भाव अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा क्रोध का नाश करती है और सदाचार कुलक्षण का अंत करता है। राजन, नाना प्रकार की भोग सामग्री, माता, घर, स्वागत सत्कार का ढंग और भोजन तथा वस्त्र के द्वारा कुल की परीक्षा होती है। किसी के घर में कैसा भोजन है, ये कुल कैसा है, इसका ज्ञान होता है। उसके स्वागत के तौर तरीके क्या है, उससे ज्ञान होता है। उसके पास जो भोग सामग्रियां हैं उससे उसका ज्ञान होता है। देहाभिमान से रहित पुरुष के पास यदि न्यायुक्त पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता। फिर कामासक्त मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला है, वैद्य है, धार्मिक है, देखने में सुंदर है, मित्रों से युक्त तथा मधुरभाषी है, ऐसे मित्र की सर्वदा रक्षा करनी चाहिए। अधम कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म की रक्षा करता है, कोमल स्वभाव वाला है तथा लज्जाशील है, वह सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर होता है। जिन दो मनुष्यों का चित्त से चित्त, गुप्त रहस्य से गुप्त रहस्य और बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। मेधावी पुरुष को चाहिए कि दुर्बुद्धि और विचार शक्ति से हीन पुरुष का तिनके के समान ढके हुए कुएं के भांति त्याग कर दे, क्योंकि उनके साथ रहने पर मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान पुरुष के लिए उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, साहसिक और धर्महीन पुरुष के साथ मित्रता न करें। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ हो, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अनुराग रखने वाला, जितेंद्री मर्यादा के भीतर रहने वाला और मैत्री का त्याग न करने वाला हो। इंद्रियों को सर्वथा रोक रखना तो मन मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है और उन्हें बिल्कुल खुली छोड़ देने से देवताओं का भी नाश हो जाता है, परंतु सावधानी पूर्वक इनका उपयोग करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव, गुणों में दोष नहीं देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का अपमान न करना, इन गुणों से मनुष्य की आयु बढ़ती है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो अन्याय से नष्ट हुए धन को स्थिर बुद्धि का आश्रय ले अच्छी नीति से पुनः लौटा लेने की इच्छा रखता है वह वीर पुरुष माना गया है। अरे भाई थारे अन्याय से पैसों आ गयो ना भाई लाग थारो मैं कौन रखा, वो वीर पुरुष होता है। जो आने वाले दुख को रोकने का उपाय करता है, वर्तमान कालिक कर्तव्य के पालन में दृढ़ निश्चय रखने वाला होता है और अतीत काल में जो कर्तव्य शेष रह गया उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी भी अर्थ से रहित नहीं हो सकता। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सदा कल्याणकारी कार्यों को ही करे। मांगलिक पदार्थों का स्पर्श, चित्त वृत्तियों का निरोध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्पुरुषों का बारंबार दर्शन, ये सब कल्याण करने में सहायक होते हैं। उद्योग में लगा रहने वाला धन लाभ और कल्याण का मूल होता है, इसलिए उद्योग न छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है और अनंत सुख का भोग करता है। तात, समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारी, अत्यंत श्री संपन्न बनाने वाला दूसरा कोई नहीं माना गया। जो शक्तिहीन है वह तो सब पर क्षमा करे, जो शक्तिमान है वह भी धर्म के लिए क्षमा करे, तथा जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान है उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुष्य धर्म और अर्थ से नष्ट नहीं होता उसका यथेष्ट सेवन करे, किंतु मूढ़ व्रत न करे। मूढ़ व्रत माने आसक्ति एवं अन्याय पूर्वक विषय सेवन, ये मूढ़ व्रत कहलाता है। जो दुख से पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय और उत्साह रहित है, उनके यहां लक्ष्मी का निवास संभव ही नहीं है। दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता के कारण लज्जाशील मनुष्य को अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अति शूरवीर, अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाले और बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास राजलक्ष्मी भय के मारे रहती नहीं है। नहीं, राजलक्ष्मी भय के मारे जाती नहीं है। अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत दानी, अति शूरवीर, अधिक व्रत नियमों का पालन करने वाला, बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती। ओ, भय के मारे नहीं जाती, उसके पास पहुंचती नहीं है, उसके पास से लक्ष्मी नहीं जाती, ये नहीं है। इनको डर लगता है, अतिशय दानी होता है ये दे देगा क्या फायदा, बहुत ज्यादा शूरवीर होता है तो उसके पास लक्ष्मी नहीं मिलेगी, ज्यादा व्रत नियम करने वाले के पास नहीं मिलेगी, बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले के पास लक्ष्मी जाती नहीं है, उल्टा समझ लिए। राज लक्ष्मी न तो अत्यंत गुणवानों के पास रहती है और न बहुत निर्गुणों के पास रहती है, यह न तो बहुत से गुणों को चाहती है और न गुणहीन के प्रति अनुराग रखती है। उन्मत्त गऊ के भांति यह अंधी लक्ष्मी कहीं कहीं ठहरती है। वेदों का फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्राध्ययन का फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्री का फल है रति सुख और पुत्र की प्राप्ति, तथा धन का फल है दान और उपभोग। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से परलोक साधक यज्ञादि कर्म करता है, वह मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता, क्योंकि उसका धन बुरे रास्ते से आया हुआ होता है। घोर जंगल में, दुर्गम ग्राम में, कठिन आपत्ति के समय में, घबराहट में और प्रहार के लिए शस्त्र उठे रहने पर भी मनोबल संपन्न पुरुष को भय नहीं होता है। उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच विचार कर कार्य आरंभ करना उन्हें उन्नति का मूल मंत्र समझना चाहिए। तपस्वियों का बल है तप, वेद वेत्ताओं का बल है वेद, असाधुओं का बल है हिंसा और गुणवानों का बल है क्षमा। जल, मूल, फूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन और औषध, ये आठ व्रत के नाशक नहीं होते हैं। जिस दिन व्रत हुए वे दिन जल ले सके और दूध पी सके, फल ले सके, घी ले सके और कोई ब्राह्मण की इच्छा है कि लेने देने की बात कर सके, गुरु का वचन और औषध ये सेवन कर सकते हैं, वो नाशक, वो व्रत नाशक नहीं होते हैं। गुरु ने आज्ञा दे दी कि भाई जाओ तुम भोजन कर लो, तो भोजन कर लेने पर व्रत नष्ट नहीं होता है। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी न करें, थोड़े में धर्म का यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामना से प्रवृत्ति होती है वह तो अधर्म है। अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को सद्व्यवहार से वश में करे, कृपण को दान से जीते और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करे। स्त्री, धूर्त, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुषत्व के अभिमानी, चोर, कृतघ्न और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नित्य गुरुजनों को प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगा रहता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश और बल ये चारों बढ़ते रहते हैं। जो धन अत्यंत क्लेश उठाने से, धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त होता है, उसमें आप मन मत लगाइए। विद्याहीन पुरुष, संतानोत्पत्ति रहित स्त्री प्रसंग, आहार न पाने वाली प्रजा और बिना राजा के राष्ट्र के लिए शोक करना चाहिए। अधिक राह चलना देहधारियों के लिए दुख रूप बुढ़ापा है। बार बार पानी गिरना पर्वतों का बुढ़ापा है। वचन रूपी बाण का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। अभ्यास न करना वेदों का मल है। ब्राह्मणोचित नियमों का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। वाल्लिक देश माने बलक बुखारा पृथ्वी का मल है। झूठ बोलना पुरुष का मल है। क्रीड़ा एवं हास परिहास की उत्सुकता पतिव्रता स्त्री का मल है और पति के बिना परदेश में रहना स्त्री मात्र का मल है। सोने का मल है चांदी, चांदी का मल है रांगा, रांगा का मल है सीसा और सीसा का मल है मल। सोकर नींद को जीतने का अभ्यास न करें, कामोभोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें, लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा न रखें और अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास न करें। अब बार पी लो फिर कौन पिया। एक आदमी ने क्या बूढ़ी बीड़ी क्यों पी भाई, कि बाप पी लीजिए कि पीली बात तो मैं इसलिए पी कि अब बीड़ी पीनी कौन, जना पी लो, जना बाप पी ली फिर छोड़ दी मैं तो, गलत बात है, ऐसे नहीं छोड़ी जाएगी। लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा रखना और अधिक पीकर मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास मत करो। जिसका मित्र धनदान के द्वारा वश में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत लिए गए हैं और स्त्रियां खान पान के द्वारा वश हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल है। जिनके पास हजार है वे भी जीवित है, जिनके पास सो है वे भी जीवित है। अतः महाराज धृतराष्ट्र, आप अधिक लोभ न करें, लोभ छोड़ दीजिए, इसी से किसी तरह का जीवन नहीं रहेगा, इसी से भी जीव किसी तरह जीवन तो रह ही जाएगा, लोभ छोड़ दीजिए। क्या लोभ छोड़ने से आप मर जाओगे? क्या आपके बेटे मर जाएंगे? इस पृथ्वी पर जो भी धान, जो सौ जौ, सोना, पशु, स्त्रियां हैं, वे सब के सब एक पुरुष के लिए भी पूरे नहीं है। ऐसा विचार करके मनुष्य को मोह में नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपसे फिर कहता हूं, यदि आपका अपने पुत्रों और पांडवों में समान भाव है तो उन सभी पुत्रों के साथ एक सा बर्ताव कीजिए। अंतिम अध्याय विदुर नीति का। विदुर जी कहते हैं, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित हो अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन करता है, उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वो सदा सुखी रहता है। जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वह जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुल को छोड़ देता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त होकर सुखपूर्वक शयन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास चुगली करके उसकी चापलूसी करना, गुरु से भी मिथ्या आग्रह करना, ये ब्रह्म हत्या के समान है। गुणों में दोष देखना ये मृत्यु के समान है। कठोर बोलना, निंदा करना, ये लक्ष्मी का वध करने के समान है। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव या उतावलापना या आत्मप्रशंसा, ये विद्या के शत्रु हैं। आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान, लोभ, ये सात विद्यार्थियों के लिए सदा दोष माने गए। सुख चाहने वाले को विद्या कहां से मिले? विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। सुख चाहो तो विद्या को छोड़ो और विद्या चाहो तो सुख का त्याग करो। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से उल्टा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। इधर एक ही ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। बकरियां, कांसे का पात्र, चांदी, मधु, अर्क खींचने वाला यंत्र, मंत्री या पक्षी, वेदवेत्ता ब्राह्मण, बूढ़ा कुटुंबी और विपत्ग्रस्त कुलीन पुरुष, ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहने चाहिए। भारत मनु ने कहा है कि देवता, ब्राह्मण और अतिथि की पूजा के लिए बकरी, बैल, चंदन, वीणा, तर्पण, मधु, घी, लोहा, तांबे के बर्तन, शंख, शालग्राम और गोरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। तात, अब मैं तुम्हें यह महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूं। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग मत करना। धर्म नित्य है किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है पर इसका कारण अविद्या ही अनित्य है। आप मंत्रियों को छोड़कर नित्य में स्थित होइए, संतोष धारण कीजिए। संतोष से बड़ा कोई लाभ नहीं है। धन धान्यादि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यहीं छोड़कर यमराज के वश में पड़ना होगा। बड़े बड़े बलवान महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डाल करके देखो, उनके साथ कौन सा धन गया है, कौन सा राज्य गया है। राजन जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल छित्राए करुण स्वरूपों में विलाप करते हैं, करुण स्वरों में विलाप करते हैं, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, चिल्लाते हैं, रोते हैं और बड़ा प्रेम दर्शाते हैं। और फिर उसको काठ के भांति उसे जलती हुई चिता में छोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। यह मनुष्य पाप और पुण्य से बंधा हुआ इन दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। विचार तो करो, आगे का विचार करो, ये यहाँ के राज्य धन और बेटे पर क्या विचार करते हो धृतराष्ट्र? बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार इस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृद पुत्र चिता में छोड़कर अपने घर लौट आते हैं और वे अपनी ही बातों में मस्त हो जाते हैं। अग्नि में डाले वे उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ भला और बुरा कर्म ही रहता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक धर्म का संग्रह करे। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है, वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। सावधान हो जाइए, आप उसको जान दीजिए जिससे यह आपका स्पर्श न करे। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपको महान सुयश की प्राप्ति होगी और इस लोक तथा परलोक में आपके लिए कोई भय नहीं रहेगा। हे धृतराष्ट्र, ये जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है, धैर्य इसके किनारे हैं, इसमें दया की लहरें उठती हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही रहती है। काम क्रोध आदि रूप इस नदी के अंदर ग्राह है। पांच इंद्रियों के जल से संपूर्ण इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो बुद्धि धर्म विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधु को आदर सत्कार से प्रसन्न करते हैं, उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में कभी संदेह नहीं होता, कभी मोह में नहीं पड़ता। अपने खाने पीने और इंद्रियों के सुख की लेने की जो इच्छा है उसको धैर्य से पूरा करे, भूख की ज्वाला को भी धैर्य पूर्वक सहे, इसी प्रकार काम वेग को भी धैर्य पूर्वक सहे, इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों से नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्म से रक्षा करे। जो प्रतिदिन जल से स्नान संध्या तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण करता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों के लिए अन्न का त्याग करता है, सत्य बोलता है, गुरु की सेवा करता है, वे ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके जो गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाने के कारण ऊर्ध्वलोक में जाता है। वेश्य यदि वेद शास्त्र का अध्ययन करके ब्राह्मण क्षत्रिय तथा आश्रित जनों को समय समय पर धन देकर उनकी सहायता करता है, यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता है, वह मरने के पश्चात स्वर्गलोक में दिव्य सुख भोगता है। शूद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्यों के क्रम से न्यायपूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है तो वह व्यथा से रहित हो पापों से मुक्त होकर देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। महाराज, आपसे मैंने चारों वर्णों का धर्म बता दिया, इसे बताने का कारण भी सुनिए कि आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राज धर्म में नियुक्त कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम इसी प्रकार मुझे प्रतिदिन उपदेश दिया देते रहो, तुम्हारे उपदेश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हे स्वामी, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो मेरा तो विचार भी ऐसा ही है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी बुद्धि रखता हूं, परंतु क्या करूं, जब मेरा बेटा दुर्योधन मेरे से मिलता है तो मेरी बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति विदुर इस संसार में किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को अचल मानता हूं, उसके सामने तो पुरुषार्थ व्यर्थ ही है। अब मैं क्या करूं? विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो, मुझे उसे ही सुनने की बड़ी इच्छा है। तुम्हारी कहने की जो शैली है वो बड़ी अनूठी है, मैं उसको अमृत का घूंट समझ करके पीता हूं, और कहो। विदुर जी ने कहा, महाराज, अब विदुर जी आगे सनत सुजाती ऋषियों की बात बोलेंगे। तुम्हारा कहने का ढंग बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अनूठा है, तुम्हारी वाणी में अमृत है, तुम मुझे ऐसे और भी कोई प्रसंग सुनाओ। विदुर ने कहा, भरतवंशी धृतराष्ट्र सनत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था, मृत्यु है ही नहीं। महाराज, वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे आकर उपदेश देवेंगे? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती है तो तुम ही मुझे उपदेश देओ। विदुर जी बोले, राजन, मेरा जन्म शूद्रा स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मुझे अधिकार नहीं है। किंतु कुमार सनत सुजात की बुद्धि सनातन ब्रह्म को विषय करने वाली है, मैं उसे जानता हूं। ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है वह यदि गोपनीय तत्व का भी प्रतिपादन कर दे तो देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। यही कारण है कि मैं स्वयं उपदेश न देकर आपको सनत सुजातीय नाम बता रहा हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ, भला इस देह से यहां उनका समागम कैसे हो सकता है, मैं उनसे भी उपदेश सुनना चाहता हूं। विदुर जी कहते हैं, उपदेश तो आप सुनना चाहते हो, किंतु उस उपदेश का अनुष्ठान आप कितना करना चाहते हो ये भी तो आप सोचो। लेकिन यदि आपने सनत सुजाति के लिए कहा है तो मैं उन ऋषि का स्मरण करता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उसके बाद विदुर जी उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण करने के लिए बैठ गए। उन्होंने उनका चिंतन किया और उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया और वहां वे पधार गए। धृतराष्ट्र अपने आसन से खड़े हुए, विदुर, सनत सुजाती ऋषि आ गए, सनत सुजात आ गए, हाँ महाराज, सेवा कीजिए। पाद्य अर्घ्य मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया और उसके बाद सुखपूर्वक बैठकर विदुर जी ने कहा, हे भगवान, धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय खड़ा हुआ है जिसका समाधान मेरे द्वारा करना उचित नहीं है। आप ही इस विषय का निरूपण करने के योग्य है, जिसे सुनकर ये नरेश सब दुखों से पार हो जाए और लाभ हानि प्रिय अप्रिय जरा मृत्यु भय अमर्ष भूख प्यास मद ऐश्वर्य चिंता आलस्य काम क्रोध तथा उन्नति अवनति सब द्वंद्व इन्हें कष्ट न पहुंचा सके, ऐसी आप कृपा। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर महान बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने विदुर के कहे हुए उस वचन का अनुमोदन किया और अपनी बुद्धि को परमात्मा के विषय में लगाने के लिए एकांत में सनत सुजाति से अपना प्रश्न रखा, अपने कल्याण का प्रश्न रखा। वो प्रसंग कल चलेगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।